This is All India Radio. In a special program, now we bring you a bilingual discussion on seven phases of general elections, major issues and key constituencies. The participants are political analyst N.K. Singh and Anant Bagaitkar. Nilab Srivastav, journalist, initiates and moderates the discussion.
The campaign in the country for the general elections has reached its crescendo now. Six phases done, about 483 seats where the polling has been completed. Seventh phase now on May 19th, where eight states will see 59 about seats going to polls. While the campaign, we see that no enthusiasm has gone down even for the politicians, for campaign managers, even for the election commission. Looks like that the campaigning it's reaching is carrying its momentum in this sweltering heat of the country too. And when it comes to the counter allegations of different political parties, that seems to be catching its own stride and going into the seventh phase. First, from you, sir, I would like to know, what do you think has been the campaigning till now? Six phases. One side, we have the Prime Minister-led campaign of the Bharatiya Janata Party. On the other side, the primary opposition, the Congress Party, Rahul Gandhi and his senior leaders and other parties also. I will also talk to you about the context of the West Bengal elections, the polls in West Bengal. But first, the entire campaign in these six phases and how it is going in the seventh.
I have never come across more bitter campaign than what it is today. In the past 42 years of my political analysis and analysis of elections, I have never come across this kind of bitterness that we see today. I don't know what exactly is the reason behind that. But one, ideological commitment does influence voters. But equally, the process of sometimes lumpenization also tells upon health of the election system. That, I think, is the main reason. See, for example, all these six phases that we have seen, it's not that the poll percentage has gone up. As you said, rightly put it, enthusiasm is very palpable, no denying the fact. But this enthusiasm, with the passage of every phase, has deteriorated into violence. And today, the threat is that seventh phase election will be most violent election that we have ever come across. The reason, obviously, is West Bengal. And the kind of violence that has been let loose by the powers that be or the political system. So that is a matter which really is concerns all of us, those who are into democratic system and those who have a great affection for democratic system and respect for the system. They are quite concerned about the general deterioration in milieu of election system, this being the situation. And mind you, the enthusiasm, if it is put in a positive connotation, this enthusiasm gets reflect electoral turnout. Turnout is not much. Turnout is rather slightly less than what it was in the 2014 election. Still, there is no denying the fact that notwithstanding all these facts, enthusiasm is getting converted into violent acts, terrorizing the voters, like what is happening in West Bengal is terrorizing the voters. Now, today, that precisely is the reason why the Election Commission has deployed 710 companies. That precisely means 75,000 paramilitary forces.
An all-time high.
All-time high, and that too in a concentrated area in nine constituencies which are juxtaposed. So you can imagine the kind of distrust society, institutions, people have in the state machinery. The kind of distrust people have in the police. And the way things are happening, it's not from one side only, but broadly, it is from powers that has become completely politicized. This was not expected by the constitution makers when they developed federal structure, denying all other models that they have in front of them. The Canadian, US model, all these kind of models. After their own model, on a stock premise that there are multiplicity of identities, multiplicities of nuances. Therefore, we must have a federal structure wherein regional aspirations get full play. And the net result of this federal constitution, our constitution makers had never dreamed of this kind of situation. But this is what is happening now. So this is a dangerous situation. I think constitution must be rewritten once again so far as federal structure is concerned, and the damage which West Bengal incident is going to cause to the entire federal structure in the days to come. I think this concept of federalism will have a permanent damage to that fabric, and that will last for maybe two decades because it is very difficult to be repaired. And what is my fear is that this will have reflection in other states also, which is not ruled by the same government which is at the center, or is not ruled by government different from the central government. So that is what is the apprehension having.
भटकर साहब, जब सिंह साहब कहते हैं वायलेंस की बात पश्चिम बंगाल में, हाल ही में ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, कल ही इलेक्शन कमीशन ने इन वायलेंस की घटनाओं को देखते हुए जो स्पेशली बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह जी की रैली में जो हुआ, उसके बाद सारे छह फेजेस में भी पश्चिम बंगाल में वायलेंस हुई है। कुछ और स्टेट्स में वायलेंस रही है, जैसे एलडब्ल्यूई रिलेटेड है, वो नक्सल रिलेटेड है, मगर ये जो वेस्ट बंगाल के साथ या वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इलेक्शन कमीशन ने जो कैंपेन है वो एक दिन या 20 घंटे के आसपास रिड्यूस कर दिया, आज रात 10 बजे वो खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री की भी रैलियां दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, तो ये पर्सपेक्टिव कैसा है कि ये पूरा इलेक्शन जो है क्या वेस्ट बंगाल सेंट्रिक हो गया है, या ये लास्ट फेज में जाके अब हम देख रहे हैं कि वायलेंस खत्म नहीं हो रहा और इलेक्शन कमीशन को एक आउट ऑफ द बॉक्स या प्रोबेबली वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर मेजर लेना पड़ा?
नहीं, ये तो एक अभूतपूर्व मेजर कहा जा सकता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अपना जो कैंपेन की समयावधि है वो उसको कम कर दिया है। लेकिन एक जो कहावत है कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोवोकेशन है वो दोनों तरफ से है और ये सब जो है ये रिएक्शंस भी है। लेकिन जैसे सिंह साहब ने कहा कि ये बिटरनेस भी नहीं, मैं तो इसको कहूंगा कि जैसे एक बहुत एक्रीमोनियस, यानी जिसको कहते हैं कि हमारे जो प्रतिपक्ष हैं या प्रतिपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष है, जो जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस तरह का प्रचार, मैं भी 1980 से इलेक्शन कवर करते आ रहा हूं एज ए रिपोर्टर, लेकिन इस तरह का जो एक शत्रुतापूर्ण और बहुत ही प्रक्षोभक, जिसको कहते हैं प्रोवोकेटिव कैंपेन, एग्रेसिव कैंपेन, हमने कभी देखा नहीं या हमने अनुभव नहीं किया। तो इसीलिए इसमें मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी सबकी है, ये खाली स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट भी जैसे मनमानी हो उस तरह का काम करे। वेस्ट बंगाल में तो ये हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे जगह देखें, जैसे एक जमाने में बिहार में हुआ करता था, लेकिन तुलना में आज बिहार के जो इलेक्शंस हैं वो काफी शांतिपूर्ण होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, उस राज्य में भी एक जमाने में कहीं न कहीं हिंसा होती थी, लेकिन वहां भी चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य इतना ही है कि जैसे लगता है कि वेस्ट बंगाल की ये छाया किसी दूसरे राज्यों में न पड़े, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें कि ये छाया किसी और राज्य में न पड़े। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अगर मर्यादा और संयम का पालन किया जाएगा तो इसमें से रास्ता निकल सकता है। और तीसरी बात जो है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, क्योंकि हमारा देश एक फेडरल पॉलिटी है और उसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है, जो स्वायत्त भी होती है, जैसे चुनाव आयोग एक है, तो उनकी स्वायत्तता, उनकी निष्पक्षता, ये बहुत अहम मानी जाती है।
सिंह साहब, जब ये हम अनप्रेसिडेंटेड की बात करते हैं, आपने भी कहा कि ये इतिहास में ऐसा पहली बार ही देख रहा हूं कि इतना हेट्रेड वाला और ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां एक दूसरे के एलिगेशंस बहुत, तो क्या ये असल मुद्दे जो हैं, आर दे टेकिंग अ बैक सीट, जिन पे चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो बीजेपी का विकास का मुद्दा हो, नेशनलिज्म का हो, या कांग्रेस का न्याय और न्यूनतम आय देने का हो, या पिछले 5 साल की इनकम्बेंसी का मुद्दा हो?
चुनाव में आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए और क्या हो रहा है, इसमें एक गैप है। आपने 42 साल से मैं और अनंत ये कर रहे हैं, अनंत को भी 40 साल के आसपास हो रहे हैं। हकीकत यह है कि आप किसी से भी पूछेंगे कि वोट किस चीज पे देते हो, तो वो यही कहेगा कि साहब विकास पे देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। उसका कहना और उसका करना, इन दोनों में गैप होता है। यही गैप पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें मिलेगा आपको, मंच पे हम जो बोलते हैं और हमारा जो कंडक्ट होता है उसमें एक गैप आ जाता है। वेस्ट बंगाल इसके लिए जाना जाता है, इसके पहले भी यही होता था और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से आज आपको वहां खड़े भी रहना है तो आपको ही उतने ही काउंटर फोर्स से जाना पड़ेगा, उसी तरह के मॉडल को लाना पड़ेगा अगर आप सर्वाइव पॉलिटिकली करना चाहते हैं। क्यों आखिर, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम है, तो ये एबरेशंस क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि वहां के जनता को इससे मतलब भी नहीं है कि विकास कितना हुआ। वो जो पावर में अनइथिकल शेयर होता है पावर केक में, इसको वो एक समाज का एक वर्ग खड़ा करते हैं जो मूल रूप से लुम्पेनाइज्ड होता है, और उस वर्ग को खड़ा करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो वर्ग धीरे धीरे ये देखता है कि नहीं, हमारी कमिटी है, ब्लॉक कमिटी एक है जिसमें हम ही है कैडर के नाम पे, और वही वो जो मदद होती है राज्यों से, केंद्र से मिलती है, उसके नाम तय करते हैं कि कौन बेनिफिशियरी होगा, जानते हैं कि इसमें कितना पावर करप्शन के साथ कितना पैसा आ जाएगा,
कितना शेयर होगा,
शेयर होगा, और उस पावर में भी होगा और उसमें भी होगा, तो लिहाजा वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो सत्ता में बैठा है वो तैयार नहीं उसके लिए, दूसरा उसको लेना चाहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की स्थिति नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस की है, तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टीज एक तो आइडियोलॉजीज पे कमिटेड हों, रातों रात कैसे होता है कि एक दूसरी पार्टी का आदमी अचानक आपकी पार्टी में आ जाता है? क्या हुआ आपकी आइडियोलॉजी का? वो कल तक तो आपको बुरा भला कहता था, आज उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। तो ये सारी चीजें वो सोचता की है, लेकिन अंत में आके होता है एक चीज जो हम लोग आमतौर पे नहीं कहते कि जनता के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, जनता के इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, उसको इमोटिव, जाति, धर्म पे रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम मैं तो देख रहा हूं 40-42 साल में कि ये डीजेनरेट होती जा रही है, बजाय बेहतर होने के ये डीजेनरेट होती जा रही। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन, मीडिया, इन सब के लिए और खास करके मास मीडिया के लिए जरूरी है कि वो किसी तरह से इस मास को लॉजिकली एम्पावर करे, लॉजिकली करेक्ट करे और इश्यूज उनको बताए कि एक्चुअल तुम्हारा इश्यू सामने का सड़क है, रोजी रोटी है। तुम्हारा इश्यू ये नहीं है कि किसने क्या कहा, कौन किस कास्ट का है, ये इश्यू तुम्हारा नहीं है, क्योंकि कास्ट से तुमने देख लिया है कि उससे रोड्स नहीं बनती हैं। कास्ट से सिर्फ आपको कभी रिजर्वेशन के लिए कोई वायदा मिलता है और वो भी सीमित होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें लिमिटेशन है। तो लिहाजा प्रॉब्लम यहां नहीं है। आज 7वें फेज में हम जा रहे हैं। क्या वजह है कि एक स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके, वर्चुअली रिमूव, दो दो उसके ऑफिसर्स को सस्पेंड करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, और पूरा का पूरा 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस एक नौ कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैन करने के लिए लगाई जानी पड़ी है। 100% सेंट्रल फोर्सेस को लाना पड़ा है,
ये वर्चुअली 100% सेंट्रल फोर्सेस हैं।
यही उनका क्लेम है, इसी का भी क्लेम है कि 100% इसको कर दिया है, क्या मतलब पुलिस को हटा दिया है। अब इसका दूसरा विद्रूप चेहरा क्या है? आज तो आपने हटा दिया, कल तो ये सेंट्रल फोर्सेज वापस चली जाएंगी। जो धमकी वहां पे ये एलिमेंट्स हैं जो ये धमकी दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है चुनाव हो जाने दो, फिर अब समय आपकी पुलिस होगी, आपके पास सीआरपीसी आईपीसी होगा, उसकी ताकत होगी। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये सभी राज्यों में है, और ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि आप यहां तक डीजेनरेट हो गए हैं कि आप गवर्नमेंट का इस्तेमाल, पुलिस को तो पॉलिटिसाइज आप करते जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट जो ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम सबको मिलकर मीडिया को, इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट भी सोचेगी तो बेनिफिट यही होगा कि जितना ही पीसफुल इलेक्शन होगा उतना ही बेनिफिट आपके डेवलपमेंट का उसे मिलेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। लिहाजा एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए कि इश्यूज को पहले समझाया जाए और उसके बाद इस बिकरिंग का लेवल, मुझे याद है एक जमाने में पहले होता था इलेक्शन कैंपेन और ये स्थिति होती थी कि अगर उनकी रैली इस तरफ से आ रही है तो ये अपनी रैली या तो रोक देंगे या डाइवर्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी यही करती थी,
लेवल ऑफ कर्टसी,
ये कर्टसी हुआ करता था और अगर सामने मिल गए तो दोनों मुस्कुरा के अभिवादन करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सब तो गायब हो गया। अगर गलती से मिल गए तो उसके बाद जो हिंसा होगी वो अविस्मरणीय होगी, जिसको फैदम नहीं कर सकते। तो अगर इतना डीजेनरेट हो रहा है तो मेरे ख्याल से सबको, चूंकि ये 7वां है, आखिरी है, 6 निपट गए हैं, हर में वायलेंस हुआ, कम से कम कुछ राज्यों में तो ये वायलेंस साफ दिखाई दे रहा है, खास करके वेस्ट बंगाल में। तो वजह क्या है इस तरह के वायलेंस की, इसको देखने की जरूरत है। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये, और भारत में आइडेंटिटीज म्यूचुअली होस्टाइल आइडेंटिटीज हैं, एक तो नहीं है, 4-6 हजार हैं, 4,000 अगर आइडेंटिटीज, सब आइडेंटिटीज आपके, सब नेशनलिज्म वगैरह वगैरह जो चीजें हैं रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सब कास्ट के आधार पे, अगर वो इस तरह से करने लगा, एग्रेसिव हो गया, तो आपका इलेक्शन माने ये माना जाएगा कि एक इंटरनल वॉर हो जाएगा। इससे बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल एक एग्जाम्पल है और इमीडिएटली इसके करेक्टिव मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशनली और हर इंस्टीट्यूशन को और पब्लिक फोरा पे इसको लेने की इमीडिएट जरूरत है।
डीजेनरेशन की बात कही, लेजिटिमाइजिंग द इलेजिटिमेट, किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स हैं या जो गूंस हैं, लुम्पन एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से कैप्चर करते हैं पॉलिटिकल स्पेस और हम उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं 50 सीटें और हैं बगेतकर साहब जो पोल्स में जा रही हैं, उसमें एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है कहा जाता है सालों से, पश्चिम बंगाल की 9 के अलावा, तो 50 और सीटें हैं। तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो स्टेट है क्योंकि सबसे ज्यादा एमपीज वहां से आते हैं 80, और वहां से देश का, दिल्ली का दिशा निर्धारण होता है। वहां भी एक अलग सा सिनेरियो है इस बार, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस, और एक महागठबंधन की भी एक अब फिलॉसफी है जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी और साथ में आरएलडी, वो साथ आए हैं और वो भी कैंपेन कर रहे हैं। वहां की भी सीटें इस इलेक्शन में वोट करेंगे 19 तारीख को। वहां के समीकरणों को आप कैसे समझ रहे हैं? क्या वो कैंपेन जो फर्स्ट फेज से चालू हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पहले फेज में भी वोटिंग हुई और अब 7वें फेज में, तो कैसा वो कैंपेन है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज और अपने कैंपेन में वहां भी कोई कसर छोड़ के नहीं रख रहे हैं।
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको तो सत्ता हासिल करनी है। देखिए, महागठबंधन हो या जिसको कहते हैं कि सोशल जस्टिस के फोर्सेस हैं, तो वो सामाजिक न्याय के फोर्सेस हैं, या जैसे बीजेपी एक पार्टी है या कांग्रेस एक पार्टी है। देखिए, ये विचारधारा अपने अपने पार्टी की होती है, लेकिन अगर किसी एक मुद्दे पे अगर दो या तीन पार्टियां इकट्ठा हो जाती है और वो एक अपनी एक प्लैंक जिसको कहते हैं कि अपना एक प्रचार का मुद्दा लेके अगर चुनाव में उतरती है, तो उसमें किसी को आक्षेप लेने की या उसको ऑब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है कि अगर इन चीजों के आधार पर अगर आप इस तरह का प्रचार करोगे कि जिसकी समाज में एक हिंसक प्रतिक्रिया हो, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे ये पूरे प्रचार चुनाव प्रचार तंत्र में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती हुई हमको इस चुनाव में नजर आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ हो ही रहा था, लेकिन इस हद तक चुनाव प्रचार नहीं गया कि जिससे हिंसा हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ऐसे एक जिसको कहते हैं ट्रैप में अटकते जा रहे हैं कि जिसमें लगता है कि विनेबिलिटी, जो एक नया शब्द हमारे चुनाव की राजनीति में आया है, कि उम्मीदवार की विनेबिलिटी देख के ही हम उसको टिकट देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम एक तरह से धोखे से ये खतरनाक चीज होती जा रही है, क्योंकि विनेबिलिटी का मतलब बाहुबली हो तो आप वहां से जीत सकते हो उस चुनाव क्षेत्र से, लेकिन बाकी अगर चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे लोकतंत्र के जो मूलभूत तत्व हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम समझौता या कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। और केवल कि हमारी पार्टी की एक सीट आनी चाहिए, अगर ये देख के अगर हम टिकट का बंटवारा करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस खतरनाक दिशा में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा पैदा हो सकता है इससे। इसीलिए जैसे आपने पहले कहा कि जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे चुनाव की जब शुरुआत हुई तो विकास, प्रगति और राष्ट्रवाद, तो ये चीजों के ऊपर हम एक नैरेटिव या एक तरह से प्रचार आगे चलेगा, ये हम मानते आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे देखा, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सेना के नाम से वोट मत मांगिए, लेकिन वो मांगा गया। सुरक्षा के नाम पे आप वोट मत मांगिए, वो हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी जो मर्यादाएं हैं उससे हट के केवल हमें जीत हासिल करनी है किसी भी हालत में, ये चीज दिमाग में रखते हुए अगर हम चुनाव में उतरेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र से भी समझौता कर रहे हैं।
एक सवाल अब मैं प्रॉम्प्टेड हूं, आप दोनों ने इस देश में चुनाव दशकों से देखे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जिसकी हम बात करते हैं, मार्च 10 को जब कमीशन ने अनाउंस किया तभी से ये लागू हो गया, वोटर इसको किस तरह से देखता है? इलेक्शन कमीशन ने जो ये अनप्रेसिडेंटेड और भी बहुत सारी चीजें, कई बार जब लोगों ने कोई बयानबाजी किया तो किसी को कैंपेन से दो दिन रोक दिया, किसी को सेंसर इशू किया, किसी को स्ट्रक्चर इशू किया इलेक्शन कमीशन ने, तो जनता के पर्सपेक्टिव से आप लोग कैसे देखते हैं? ये हमारे श्रोताओं के बेनिफिट के लिए होगा कि क्या देखता है वोटर इसको, कि जब उन्हें एक रिप्रीमांड किया, डांट लगाया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या मैसेज जाता है?
देखिए, एक जो रिडीमिंग एस्पेक्ट है जो कि बहुत अच्छा लगता है, देयर इज अ ग्लिमर ऑफ होप, आशा की एक किरण नजर आ रही है जनता में, वो ये है कि धीरे धीरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, जबकि ये कोड है, ये लॉ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इन्फोर्सिएबल भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मॉडल कोड की सेंक्टिटी किसी लॉ से भी ज्यादा होती जा रही है। कुछ पार्टीज ने बैठक की इलेक्शन कमीशन के साथ, इस पर सहमति व्यक्त की और वो कोड बना। आज आप देखें कि उसकी पवित्रता को लेके जनता में एक अजीब सा उत्साह होता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी बाई एंड लार्ज उसको मानती है, दे ट्राई टू एडहेयर टू दैट, और जो वायलेशन होता है वो तो मेरे ख्याल से इतना बिटर हो गया है, ये उसलिए हो रहा है। एक चीज है कि जनता को इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सेंक्टिटी बहुत जनता की नजरों में है। कई बार होता है ना कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, मान लीजिए कि 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कर रहा है, तो वो फोर्स ऑफ लॉ ऐसे ही कैरी करने लगता है,
बिल्कुल उसका वजन उसकी
होती है। तो यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वजन अपने आप में बहुत है और पवित्रता इसकी जनता की नजरों में काफी है। यही वजह है कि आज जब इन्फोर्स आप करने जाते हैं, तो आपने अचानक चुनाव में प्रचार के लिए कुछ आदेश दे दिए, किसी को कह दिया कि 24 घंटे आप प्रचार नहीं करेंगे, 3 दिन प्रचार नहीं करेंगे, और वो सर झुका के मान लेता है, वरना वो कोर्ट जाके स्टे ले आए, स्टे की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता है।
जी हाँ, हमने देखा नहीं है।
नहीं, आमतौर पर वही मैं देख रहा हूं, मैंने एनालाइज किया तो पाया कि भाई किसी को 3 दिन के लिए आपने रोक दिया कि उन्होंने ये अटेंसेस किए हैं जो के खिलाफ वायलेशन है।
बड़ा गोल्डन पीरियड होता है किसी कैंडिडेट के लिए, अगर 3 दिन आप
3 दिन ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो सर झुका के उसको मानता है। ये मेरे ख्याल से पहला अच्छा चीज है। अब देखिए कि यहां पे प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनाव है,
मैं आपसे ये पूछने वाला था। जी हाँ,
वाराणसी का चुनाव, वहां भी काफी बिटरनेस होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी पूरी शांति अभी तक हमने देखी है। तो वो पॉकेट्स हैं जहां शांति है, ये एबरेशन कुछ जगहों पे होता है जहां की ये दिक्कतें हो रही हैं, और खास करके वेस्ट बंगाल उसमें पिन पॉइंट किया जा सकता है क्योंकि वो ट्रेडिशन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बाकी जगह ये चुनाव की परिदृश्य नहीं है। जो लास्ट इलेक्शन होगा सातवां फेज, उसमें बीजेपी के चार मिनिस्टर बिहार के इन्वॉल्व, मतलब कि उसमें उनके भाग्य का फैसला होना है। बिहार में टोटल 8 जगह होना है जिसमें 5 जगह बीजेपी जीती थी और उसमें से 4 में उनके मिनिस्टर्स हैं। रविशंकर प्रसाद हैं, आज यहां पे बहुत प्रेस्टिजियस हो गया शत्रुघ्न सिन्हा के पार्टी से जाने के बाद,
पटना साहब की सीट।
मीसा हैं लालू की बेटी, वो लड़ रही हैं, और एक और मिनिस्टर रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र से क्रूशियल हो गया है, आरा से लड़ रहे हैं जो होम सेक्रेटरी से, इसलिए आरके सिंह, इसलिए हो गया है। अगर आप देखें तो ये सारी सीटें जो हैं वो बेहद क्रूशियल हैं। अश्विनी कुमार लड़ रहे हैं, उनकी भी सीट काफी क्रूशियल है। बिहार में ये ट्रेडिशन हुआ करता था, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि बिटरनेस वायलेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिहार में कास्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो वल्गर शेप नहीं ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो चैतन्यता आई है, वरना बिहार भी इसी फॉर्मेट पे था। तो वेस्ट बंगाल को लेके एक सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए। बाकी जगह मुझे लगता है बाई एंड लार्ज ठीक है। पंजाब के पूरे के पूरे पंजाब में 13 जगह हो रहा है चुनाव,
13 सीटें
यूपी के 13 में हो रहा है। तो इन जगहों पे देखें तो जब ब्रॉडली तो सही है, मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की चारों की चारों हैं, झारखंड की 3 हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर पूरा देखें तो बाकी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या इलेक्शन के वायलेंस की प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, मॉडल कोड की चूंकि बिटरनेस रंजीर ने कहा, वो बिटरनेस भी नहीं, पता नहीं क्या है ये, जिस तरह का अपोजिशन में शब्दों को लेके वो मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद एक बार फिर से रीथिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे लॉस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का है। विपक्ष अपनी बात, जो गलतियां कभी रही है सरकार की, वो नहीं बता पाता है, और सरकार जो उसने किया है वो जनता के सामने नहीं, तो एक क्रिटिकल एनालिसिस जनता कर नहीं पाती है क्योंकि उसकी सीमा है। तो जनता को एजुकेट करने का दायित्व भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, वो उसमें अपने को मिस कर जाती है, और इजिएस्ट पड़ता है ना कैडर रखने की जरूरत है, ना आइडियोलॉजी रखने की जरूरत है, सिर्फ कास्ट बता दो। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 70 साल में इस तरह की पार्टी का, जो कास्टिस्ट है, जिसको अनंत सोशल जस्टिस फोर्सेस थी, जो 90s में जस्टिस फोर्सेस के नाम पे आई मंडलाइजेशन, वो एक्चुअली कास्टिस्ट पार्टी थी, उनका वर्चस्व इस चुनाव में भी बढ़ा है और लगातार बढ़ता। आज 32% जो पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व है इसमें ये फोर्सेज हैं, और मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में इनका और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अगर ये है तो बहुत चिंता की बात इसलिए है कि ये पैरोकियल कंसिडरेशन पे आती हैं। इनके जो आइडियोलॉजी होती है बहुत ही, वो कहने को तो सोशल जस्टिस फोर्सेज हैं, लेकिन एक्चुअली सोशल जस्टिस कम ही होता है, वो कास्ट को कैटर करती हैं और उनके जो पेंट अप फीलिंग्स है उनको वो धीरे धीरे उभारती हैं। उसमें ये है कि भाई आप 2000 साल से दबे रहे वगैरह वगैरह, इस टाइप
शोषण हुआ आपका,
शोषण हुआ इसी के प्लैंक पे, और अब आपको हम आरक्षण दिलवाएंगे। हाँ, इसी पे ये पूरा चलता है। न रोड बनती है, न उनके बच्चों की शिक्षा होती है, न उनकी बहबूदी का कोई
मुद्दा, फिर अगले चुनाव में चले,
वो अगले चुनाव में शिफ्ट हो जाते हैं, अगले चुनाव में फिर यही सब शुरू हो जाता है, कास्ट तो कास्ट है, उसको सब कास्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो समस्या हो रही है ये इसकी है। चुनाव तो हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है इसको सीरियसली देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, कि डेवलपमेंट पर से इशू नहीं बन पाता है। आप कोशिश भी करें तो नहीं बन पाएगा, और फिर कोशिश करें क्यों, क्योंकि जब हर जगह यही चल रहा है तो हर आदमी इसी भी बहती गंगा में जा रहा है, ये एक अच्छा वो नहीं है। 70 साल की डेमोक्रेसी में 70 साल में ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पा रहा है।
मुद्दों की भी बातें हैं, और बगेरकर साहब जो साथ में ये बड़ी सीटें भी जो हैं कंस्टिट्यूएंसी, नॉट ओनली स्टेट्स बट ऑल्सो सर्टन हाई प्रोफाइल सीट्स आर ऑल्सो वॉच्ड वेरी क्लोजली। सो बनारस की सीट है, प्रधानमंत्री की सीट है, गुरदासपुर में सनी देओल हैं उनके लिए, क्योंकि वो स्टार एक्टर हैं तो इसलिए उस पर भी बड़ी नजरें। प्रधानमंत्री वाली सीट है, सिंह साहब कह रहे थे कि वहां का डिस्कोर्स, वहां प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया है अभी कुछ दिनों पहले, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी उन्होंने भी की, वहां पे जाके एक रोड शो किया अपने कैंडिडेट के लिए वहां, मगर वो सीट भी वीआईपी थी और बड़े नजर लगी हुई थी कि ऐसा भी था कि शायद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, बट अल्टीमेटली हुआ कि अजय राय, जिन्होंने पिछली बार 2014 में कांग्रेस का दामन थामा था और चुनाव लड़ा था, वही लड़ रहे हैं। तो ये सीट्स भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, नॉट ओनली फॉर द वोटर्स जो उस कंस्टिट्यूएंसी के, बट बाहर के लोग भी देखते हैं।
ऐसा है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि वहां ऐसी कोई कटुता या कड़वाहट हमारे नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं शायद प्रधानमंत्री ने जो वाराणसी में जो कुछ विकास के कदम उठाए हैं उसका भी एक कारण हो सकता है कि जो नैरेटिव है या प्रचार की जो भाषा है वो एक मर्यादा में रही है। और इसीलिए हमने कहा कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कि जहां की राजनीति के ऊपर एक जात हो या धर्म हो, इसका एक प्रभाव हुआ करता था, वो आज भी है, लेकिन उसका रूपांतरण जो है वो हिंसा में नहीं हुआ है, जो आज हम पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसी हो गई है कि एक ही राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल हम लोगों ने अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ होता है तो ये क्यों हो रहा है, ये जब सवाल हम करेंगे तभी उसका उत्तर ढूंढने में हमें सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ये राज्यों में एक जमाने में वहां भी रिगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन राज्यों में भी चुनाव शांतिपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, भले उतनी शांति से नहीं हो गए जैसे कि दक्षिण में हो रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में 39 सीट है लेकिन एक फेज में वहां पूरी पोलिंग हो गई, या गुजरात में हो गई, पहले महाराष्ट्र में हुआ करती थी लेकिन पता नहीं इस बार इलेक्शन कमीशन ने उसको तीन फेज में क्यों किया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये चीजें हैं, ये राज्यों में अगर हो सकता है और अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी या बिहार जैसे राज्य में भी ये अब संभावना दिखने लगी है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता कि कोई कास्टिस्ट पार्टी है या कोई धर्म के आधार पर कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन कम से कम उसका रूपांतरण जो है वो इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायलेंस। इस देश के लिए वायलेंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ना तो हम देख सकते हैं कि भले आप किसी और मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो लेकिन एक तरह से जो कड़वा हट या जिसको कहते इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सरी आप एक एक्रीमोनी या एनिमिटी जैसे आप बिहेव करना शुरू, आचरण अपना दिखाने लगते हो, वो होना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र का जो है जो स्पिरिट है उसके खिलाफ जाने वाली चीज है, इसलिए हिंसा कैसे हम बंद कर सकते हैं, और इसमें चुनाव आयोग और जो मीडिया है और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, उन लोगों ने इसमें एक पहल करनी चाहिए।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर एनी इलेक्शन इज ऑल्सो द वोटिंग परसेंटेज। वी हैव सीन ओवर द सिक्स फेजेज दैट 2014 से कम गाये बगाये ऑन एन एवरेज कम वोटिंग हुआ है, बट द एम ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल्सो द पोलिटिकल पार्टीज हैज बीन दैट मोर एंड मोर वोटर्स गो। द इलेक्शन कमीशन नाउ इन्श्योर्स की कम से कम डिस्टेंस पे पोलिंग बूथ हो, सो पोलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो नाउ एवरी वन इज स्ट्रेसिंग दैट मोर एंड मोर वोटर्स शुड गो आउट एंड वोट, नो वन शुड मिस देयर वोट। सिंह साहब, हाउ डू यू think the voting can be taken up? What is the efforts that they put in?
I remember the first occasion when I cast my vote. It was 5 kilometers from my residence. Today, it is only 500 meters. That is the facility election commission has provided to us, and not to us, to the entire country. And notwithstanding the fact that it is 900 million voters that we have today. It was not the case when I voted first. So you can imagine that facilities have been provided. There is no queue now. This time when I went to vote, it took me 3 minutes to cast my vote and come back.
As quick as that.
There was no line. And obviously, for the reasons were obvious, that you had this electronic system where it takes only a fraction of a second to cast your vote and come back, and another maybe 2 minutes to undergo that process. What does it imply? This facility has been provided, and you will be surprised to know there are 3 occasions only in the country where we had crossed 60% voter turnout. That was way back in 1978-77 because of emergency. After that, it was 84, the election of Indira Gandhi, and then it was 2014. And in 14, it was a quantum jump of 8%. Same was the case in 1984 over the preceding election. It was 8% jump. This time, surprisingly, it is 1% low, and continuously consecutive for 6 elections, it continued to drop. Right. You can imagine the first phase and sixth phase, it continued to drop. There is no let up in the process. It is going down. How did it come about? The reasons have to be fathomed as to what exactly happened that election percentage is going down.
Bhagatkar sir, bigdom short mein aapse janna chahunga.
Bilkul, kyunki jaise aapne कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, कि जिसमें अब मैं दिल्ली का उदाहरण इसलिए देता हूं बहुत ही संक्षेप में, कि उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे है, आप शिमला मसूरी मत जाइए लेकिन वोटिंग के लिए आइए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो
नहीं
गई
करना
है।
शिमला मसूरी वोटिंग है जरूरी।
मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम वोटर के लेवल पे जाके जो चुनाव आयोग कोशिश कर रहे हैं उसकी हमने सराहना करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, और जितना हो सके उतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो वोटर के पास सीधे चुनाव आयोग जा सकता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चुनाव में कुछ धांधलियां होती है तो उसी चैनल से वोटर भी चुनाव आयोग के पास पहुंच सकता है।
हम उम्मीद करते हैं कि सातवें फेज की वोटिंग बहुत शानदार होगी, रिकॉर्ड नंबर की वोटिंग होगी।
शुक्रिया।
यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन द सेवन्थ फेज ऑफ जनरल इलेक्शंस, मेजर इश्यूज एंड की कंस्टिट्यूएंसीज। द पार्टिसिपेंट्स वर पॉलिटिकल एनालिस्ट एनके सिंह एंड आनंद बगायतकर। नीलाभ श्रीवास्तव जर्नलिस्ट initiated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.